हिंदी भाषा एवं लिपि, हिंदी की बोलियां एवं उपभाषाएं। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। इन राज्यों के नाम है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित हैं। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्नवत है। उपभाषाएँ बोलियाँ: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी यानी बांगरू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियाँ सम्मिलित हैं। इन बोलियों का क्षेत्र निम्न प्रकार है। खड़ी बोली, खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है। ब्रजभाषा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर जिले ब्रजभाषा क्षेत्र में है। हरियाणवी, हरियाणा प्रदेश तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। इसे बांगड़ बोली भी कहा जाता है। बुंदेली, यह बुंदेलखंड की बोली, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले इसके क्षेत्र में हैं। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले इसके क्षेत्र में हैं। अवधी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिले। बघेली, इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त शहडोल, सतना, मैहर, नागौर क्षेत्र में यह बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। मारवाड़ी, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में यह बोली जाती है। मेवाती, इस उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह बोली राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी, यह बोली जयपुर, अजमेर की बोली है। इस बोली का नाम ढूंढाणी भी है। मालवी, यह मालवा क्षेत्र की बोली तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी यानी नेपाली, यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर इलाके में बोली जाती है। गढ़वाली, यह गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल क्षेत्र में इसका बोलबाला है। कुमायूनी, उत्तरांचल का कुमायूं प्रदेश इस बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। भोजपुरी, यह बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। मगही, यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। मैथिली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यह बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। हिंदी के शब्द संपदा। शब्द परिभाषा के न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। शब्द समूह, प्रत्येक भाषा का अपना शब्द समूह होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा को बोलने एवं लिखने में किया जाता है। सामान्यतः किसी भी भाषा में 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, बालक, धेनु, हरि, कपि, लता आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् धन भव, अर्थात जिसे संस्कृत से उत्पन्न। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है तद्भव शब्दावली है। जैसे आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर, लोहा, कुम्हार आदि तद्भव शब्द हैं। इनका विकास निम्न प्रकार हुआ है। संस्कृत शब्द तद्भव शब्द, अग्नि आग, उष्ट ऊंट, घोटक घोड़ा, कपूत कबूतर, लौ लोहा, कुंभकार कुम्हार। देशज शब्द, ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती इस वर्ग में आते हैं। हिंदी में प्रयुक्त कुछ देशज शब्द हैं भोंपू, तेंदुआ, टट्टू, फटफटिया, कबड्डी, गड़बड़, थोथा आदि। विदेशी शब्द, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। हिंदी में विदेशी शब्द 2 प्रकार के हैं: मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए अरबी फारसी शब्द, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए अंग्रेजी शब्द। हिंदी भाषा में लगभग 2500 अरबी शब्द, 3500 फारसी शब्द और 3000 अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। कुछ प्रमुख विदेशी शब्द जो हिंदी शब्दावली में धड़ल्ले से चल रहे हैं निम्नवत हैं। अरबी शब्द, अखबार, आदत, आखिर अमीर, इशारा, इनाम, ईमान, इलाज, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, किताब, खबर, खराब, जनाब, जालिम, जुलूस, तहसील, तरक्की, तकदीर, तबादला, तमीज, दिमाग, नशा, फ़ायदा, बुनियाद, मुल्ला, मजहब, मतलब, मशहूर, हकीम, शराब आदि। फारसी शब्द अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आफत, आसमान, कमीना, कारीगर, किशमिश, खुश, गर्द, गवाह, गिरह, चादर, चश्मा, चेहरा, चुल्लाहा, जिगर, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पाजी, पजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सूद, सौदागर साहब आदि। तुर्की शब्द तोप, तमगा, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीबी, तोशक, लाश आदि। अंग्रेजी शब्द अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, रेल, साइकिल, मोटर, टीवी, रेडियो, जज, बटन, प्रेस, बक्स, कुली, लालटेन, राशन, कार, पुलिस, इंजन, कोट, पैंट, स्टील, लाइन, सिनेमा, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्कूल, कमीशन, टाई, पाउडर, पास, फेल आदि। फ्रेंच शब्द लैम्प, मेयर, आल्पिन, मादाम, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मेनू आदि। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के बहुसंख्यक लोग हिंदी को बोलते समझते हैं, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह भाषा किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ सरकारी कामकाज की भाषा। जो भाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत होती है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी के संविधान की धारा 443 के अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी दिवस, भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। देवभाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। यह लिपि अंग्रेजी की रोमन लिपि एवं उर्दू की फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में अनेक ऐसे गुण जो उसे वैज्ञानिक लिपि कहे जाने में सहायक हैं। देवनागरी लिपि में सुधार एवं संशोधन के अनेक प्रयास किए गए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मुंबई के महादेव गोविंद रनाडे ने लिपि सुधार समिति की गठित की। तदुपरांत महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। काका कालेकर ने देवनागरी लिपि में स्वरों के स्थान पर अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे पंच पंच, कम्बल के स्थान पर कम्बल, हिंदी हिंदी, कंठ कंठ, गंगा गंगा। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि महाप्राण ध्वनियां निकाल दी जाए, उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के लिए कोई चिन्ह लगाया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी लिपि सुधार समिति का गठन 1941 में किया गया, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा प्र को प्र और श को श्र रूप में लिखने का सुझाव दिया। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन की, जिसने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे द्विविधि लिखे जाने वाले वर्णों में से मानक रूप को स्वीकार किया जाए, जैसे अ झ ध भ ल, संयुक्त वर्ण जैसे छ त्र ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, अनुस्वर एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए। मात्राएं ऐसा स्थान रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखना चाहिए। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि ह्रस्व इ की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए और ख छ को घुंडीदार रूप में लिखा जाए। देवनागरी लिपि में आवश्यकता अनुसार अन्य ध्वनियों का भी समावेश होता रहा है। अंग्रेजी की आ ध्वनि एवं फारसी की ख ख ग ज फ को भी यहाँ समावेश कर लिया गया है। देवनागरी लिपि में समय समय पर अनेक सुधार एवं संशोधन होते रहे हैं। सुधार एवं संशोधनों की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। आवश्यकता इस बात की है कि समय के अनुरूप देवनागरी लिपि को और अधिक उपयोगी बनाया जाए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इस लिपि में गुण अधिक है, दोष न्यूनतम है। इसकी वैज्ञानिकता का प्रमुख बिंदु निम्नवत है। वर्ण विभाजन और वैज्ञानिकता, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है। यह वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ ई उ री ए आई ओ औ, टोटल 11। अनुस्वार अंग 1 विसर्ग अह एक व्यंजन कंठ्य क ख ग घ अंग पाँच तालव्य च छ ज झ इ पाँच मूर्धन्य ट ठ ड ढ ळ पाँच दंत्य त थ द ध न पाँच ओष्ठ प फ ब भ म पाँच अंतस्थ य र ल व चार ऊष्म श ह स ह संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श द्विगुण व्यंजन ळ कुल 52 स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। वायु मुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलती, किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती। देवनागरी लिपि ध्वनियात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। समग्रता देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोपण लिपि में अण एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण न है, जबकि देवनागरी लिपि में इसके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चरित अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों को साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखित तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। जैसे नाइफ में के साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, नॉलेज में के डब्ल्यू और डी तीन ध्वनियाँ साइलेंट है। देवनागरी लिपि में लेखन उच्चारण में एक रूपता है या वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। नियतता देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प हैं, इसलिए वहां वर्तने की गलतियां होती हैं। देवनागरी में क ध्वनि लिखने के लिए केवल एक वर्ण क, जबकि रोमन लिपि में कई तरह से लिखा जाता है। जैसे के लिए सी यानी कैट, के लिए के जैसे किंग, के लिए क्यू जैसे क्वीन, के लिए सी एच जैसे केमिस्ट्री। निश्चितता देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है, यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। जैसे बट, बट में यू ध्वनि अ का उच्चारण देती है, पुट, पुट में यू ध्वनि यू का उ का उच्चारण देती है, कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है, सिटी में सी ध्वनि स का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। स्पष्टता वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके दो वर्गों में वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि यहाँ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है। जैसे सी ई एम एन आई एल ओ क्यू देवनागरी लिपि में वर्णों की अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। कम खर्चीली मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान करती है, इसलिए वह कम खर्चीली। जैसे थोथा रोमन लिपि में टी एच ओ टी एच ए, देवनागरी में चंद्रिका रोमन लिपि में सी एच ए एन डी आर आई के ए, देवनागरी में स्कूल रोमन में एस सी एच डबल ओ एल। सरल कलात्मक एवं सुंदर देवनागरी लिपि सरल कलात्मक एवं सुंदर है, इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम है, अतः वर्तनी की भूलों की संभावनाएं कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना है, ये मानकीकरण है। लिपि का मानकीकरण करने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। जैसे देवनागरी लिपि में निम्न वर्ण विविध प्रकार से लिखे जाते हैं अ झ ल ध भ ळ। इनमें से प्रथम पंक्ति में लिखे वर्ण ही मान्य, द्वितीय पंक्ति के वर्ण अमान्य। ध्वनियों के उच्चारण में भी एक रूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से एक ऐसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। जैसे पैसा पैसा पैसा, इनमें से पहला उच्चारण ही मानक उच्चारण है, शेष दो उच्चारण ठीक नहीं है। वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। देवनागरी लिपि में ई ई तथा ये ए के प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं, इन संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। इसके अनुसार संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। जैसे मिठाई भलाई बुराई लड़ाई पढ़ाई खुदाई, जिन क्रियाओं को भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन रूप में के अंत में या आता है उसके बहुवचन रूप में ये और स्त्रीलिंग में ई का प्रयोग चलता है। जैसे आया आई आए शुद्ध प्रयोग, गया गई गए शुद्ध प्रयोग हैं। जिन क्रियाओं को भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन के अंत में आ आता है उनके एकवचन रूप में ए और स्त्रीलिंग रूप में ई का प्रयोग करते हैं, जैसे हुआ, हुई, हुए शुद्ध प्रयोग है। विधि क्रिया और अव्यय में ए का प्रयोग ही उचित है, जैसे चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए, के लिए। वर्गों के पंचमाक्षर के बाद यदि किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे वंदना, हिंदी, नंदन, चंदन, अंत, गंगा। अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में अर्धचंद्र का प्रयोग चाहिए, जैसे कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर। संस्कृत के जो शब्द विसर्ग युक्त हैं यदि वे तत्सम रूप में हिंदी में लिखे जाए तो हो तो विसर्ग सहित लिखे जाने चाहिए, किंतु यदि तद्भव रूप में प्रयुक्त हो तो बिना विसर्ग के भी काम चल सकता है, जैसे दुख तत्सम रूप में, दुख तद्भव रूप में, दोनों का प्रयोग ठीक है। भैया और भया, गवैया और गवैया तथा रुपया को रुपया रूप में ही लिखा जाना चाहिए, इनमें से प्रथम रूप अशुद्ध एवं द्वितीय शुद्ध हैं। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों के वर्तनी का मानकीकरण 5 फरवरी 1980 को हिंदी निदेशालय दिल्ली के प्रमुख विद्वानों ने किया। इनमें से अशुद्ध लिखे जाने वाले कुछ शब्दों के मानक शुद्ध रूप निम्न मत हैं। अशुद्ध रूप मानक शुद्ध रूप 11 11 6 6 17 17 31 31 49 49 53 53 79 79 66 66 छियासी छियासी 29 29। बहुविकल्पीय प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है अवधि? पूर्वी हिंदी बोली कौन सी है? बघेली। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना हुआ है? 1000 BC। हिंदी लिपि की, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। कौन मैथिली किस उपर वर्ग की बोली है? बिहारी। हिंदी बोलने वाले की संख्या अनुपात कितनी है? 60 करोड़। कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? पंजाब। भारत की राजभाषा संविधान सभा किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया? धारा 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? भोजपुरी। कन्नौजी किस उपवर्ग भाषा के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी। किस देश में हिंदी बोली जाती है? फिजी। हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? रूस। मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ? 5। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? अवधि। मैथिली किस वर्ग की बोली है? बिहारी। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ? 18। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? 3। किस राज्य की राजभाषा नहीं है? गुजरात। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भाग 17। कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ब। उष्म ध्वनि कौन सी है? श। कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? री। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? स्वर। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी। हिंदी के अंदर कितनी भाषा वर्ग है? 5। किस वर्ग में द ध्वनि आएगी? दंत। कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं? हड़। मेवाती किस वर्ग की बोली? राजस्थानी। हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? हरियाणा। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? न। मैथिली भाषा में लिखी पुस्तक कौन सी? विद्यापति पदावली। अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं? खड़ी बोली। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तमिलनाडु। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया? हिंदी। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? गुजरात। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी। मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बिहारी। अवधि बोली कवि कौन है? जायसी। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। मारवाड़ी बोली किस प्रांत में बोली जाती है? राजस्थान। उन्नाव कानपुर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधि। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रजभाषा। भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है? आरा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। खलिक बारी किस कवि की रचना है? अमीर खुसरो। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ, किस अभ्रंश से हुआ? शौरसेनी। कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में किया? मैथिली। अभ्रंश पौम चरियों की रचना किस भाषा में? अवहट्ट। चंद्रपादाय कृत पृथ्वीराज रासो में भाषा का कौन सा रूप है? डिंगल पिंगल। वर्ण रत्नाकर रचयिता कौन है? चेतेश्वर ठाकुर। हिंदी का कवि कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। भारत का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। बंगा बांगरू हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी बोली कौन सी है? बघेली। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 ईस्वी। सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? राजभाषा। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति के गठन किसकी अध्यक्षता में किया? डॉक्टर नरेंद्र देव। हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी। पूर्वी हिंदी का विकास अभ्रंश किस रूप से हुआ? अर्धमागधी। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? मराठी। तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है? मलयालम। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तमिलनाडु। किस प्रांत की भाषा राजभाषा नहीं है? हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? पंजाब। कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? हिंदी। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तमिल। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है? अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी भाषा अधिक पुरानी? पाली। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से? पाली। पाली भाषा का काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली। ढमोकार मंत्र किस भाषा में? प्राकृत। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? ब्रज बोली। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? ब्रज भाषा।